प्रॉब्लम्स को बाएं, हैप्पीनेस को हाय के इस अंक में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले भाग में हमने ASIA एशिया प्रोसेस के बारे में सुना और जाना। ये प्रोसेस वह है जब हमारे सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए तो मन में ये प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है और निरंतर चलता रहता है। हमारी बुद्धि को चाहिए कि वह ये प्रोसेस को मॉनिटर करे और चेक करता रहे। तो आइए इस ASIA एशिया प्रोसेस के बारे में हम जाने BK तृप्ति जी से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति
सिस्टर तृप्ति। पिछले अंक में आपने बताया कि जो ASIA एशिया प्रोसेस है वो सिर्फ इंसानों में चलता है और यही हमें इंसानों को जानवरों से, बंदरों से अलग रखता है, क्योंकि जानवरों में ये प्रोसेस नहीं चलता, उनमें ये क्षमता नहीं होती। तो इसके बारे में हमें अब आगे बताइए।
हमने देखा A फॉर एनालिसिस, S फॉर सिंथेसिस वृद्धि, I फॉर इंटीग्रेशन यूनिटी जोड़, और A फॉर एसिमिलेशन माना धारणा या इम्प्लीमेंटेशन। तो यह जो एशिया पावर है हमने देखा यह सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। मनुष्यों में यह कैपेसिटी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को वह एशिया पावर के सहारे एनालिसिस कर सकता है, उसको सिंथेसाइज कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को दूसरी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ सकता है या इंटीग्रेट कर सकता है, और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन को फिर वह एसिमिलेट माना अपने जीवन में धारण करने योग्य बना सकता है। और यही वह कैपेबिलिटी है जो जानवरों में नहीं होती, और इसीलिए जानवर और मनुष्य इतने भिन्न हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि इस एशिया टेक्निक को यूज करके हम अपने जीवन को और किस प्रकार से सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं बच्चों की तो हम क्या कहते हैं, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, थ्योरी समझते हैं, हम क्या कहते हैं, बच्चों की बुद्धि और बुद्धि की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक बच्चा पढ़ाई को ग्रास्प करता है, उतना ही अधिक बच्चा इंटेलिजेंट कहलाता है। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस कैसे बच्चों में आती है, बुद्धि की क्षमता के आधार पर। तो इसका मतलब जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे एनालिसिस करते हैं माना उस पर बुद्धि कार्य करती है, इंटेलेक्ट काम करता है। इसलिए हम कहते हैं एनालिसिस करते समय इंटेलेक्ट यूज होता है और एनालिसिस करने की क्षमता को, इंटेलेक्ट को अगर मेजर करना हो तो अब उसके भी मेजरमेंट के तरीके हैं, उसके भी यूनिट्स अब निकल आए हैं। कहते हैं ना बच्चों का इंटेलिजेंट क्वोशेंट IQ जितना अधिक हो बच्चा उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो ऐसे कितने यंत्र निकले हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट को मेजर करने के। तो इस प्रकार से अगर एनालिसिस पावर ज्यादा है तो हमें इंटेलिजेंस ज्यादा होता है और इंटेलिजेंट क्वोशेंट हमारा हाई होता है। और अगर हमें सिंथेसिस करने की क्षमता ज्यादा है, इंफॉर्मेशन को विस्तार में लाने की, उसको वृद्धि करने की अगर क्षमता ज्यादा है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इमोशनल लेवल पर हम ज्यादा एक्टिव हैं। तो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को इमोशनल लेवल पर अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं माना जिंदगी में डे टू डे लाइफ में अगर हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, संबंध संपर्क में अगर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाते हैं तो कहा जाता है इसका इमोशनल लेवल पे यह व्यक्ति स्ट्रांग है, ही इज इमोशनली स्ट्रांग। और इमोशनल स्ट्रेंथ इसको मेजर किया जाता है इमोशनल क्वोशेंट के सहारे EQ। तो इसी प्रकार अब हम इसके थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं, इंटीग्रेशन की कैपेसिटी। जब हम में इंटीग्रेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है, माना वो इंफॉर्मेशन जो हमने मन में ली, उसे एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसकी वृद्धि की, वृद्धि करने के बाद यह जरूरी है कि हम उसे जोड़े हमारे दिनचर्या की बातों से, उतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारे मन में ऑलरेडी है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर 2+2=5 कहा जाए तो हमारा एनालिसिस पावर क्या कहेगा? कहेगा नहीं, 2+2=4। और फिर हमारी सिंथेसिस पावर क्या कहेगी? हमारी सिंथेसिस पावर कहेगी 2+2=4 ये सही है, 2+2=5 ये गलत है। तो वह सही जवाब को पिक करेगी। और फिर इंटीग्रेशन पावर क्या करेगी? वह देखेगी कि अरे, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को मैं रिपीटेटिव कैसे बना सकता हूँ, अपने डे टू डे लाइफ के साथ इसको कैसे यूजफुल बना सकता हूँ। और तब हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे a+b=c। तो अभी हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया, और इस इंटीग्रेशन की क्षमता को, इस इंटीग्रेशन की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है इंटीग्रेशन कोशेंट के साथ। इसी को स्पिरिचुअल कोशेंट भी कहते हैं, SQ।
तो सिस्टर तृप्ति, ये वही है क्या जो बच्चों में हम IQ मेजर करते हैं कि बच्चों का IQ लेवल क्या है?
सही कहा आपने इला, आजकल कितने टेस्ट हैं, कितने एग्जाम्स हैं बच्चों के IQ लेवल को मेजर करने के लिए, ताकि यह पता चले कि बच्चा कितना बुद्धिमान है। साथ ही EQ लेवल को टेस्ट करने के लिए, ताकि यह पता चले कि बच्चा कितना इमोशनली स्ट्रांग है। और इसी प्रकार अब हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, तो हम जैसे जैसे इमोशनल लेवल के आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? अब स्पिरिचुअल लेवल के बारे में बात करते हैं। स्पिरिचुअल पावर रहती है इस स्टेज में हमारे सबके पास, और जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, उतनी ही ज्यादा इंटीग्रेशन की कैपेसिटी होती है। तो जितनी भी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे मन में, उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके अधिक से अधिक यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसी बनाई जाए, तो यह स्पिरिचुअल पावर के सहारे होता है। और जब मनुष्य इस लेवल पे पहुंच जाता है, स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है? वह और अधिक बाहर विस्तार से सबके बारे में सोचता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना उसके मन में आ जाती है, और वह सोचता है वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, यह पूरा एक परिवार है। तो अब वह इमोशनल लेवल पे जब अपने परिवार के बारे में सोचता है, या फिर अपने संबंधियों के बारे में सोचता है, और उससे इमोशनल क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, पर जब वह SQ माना स्पिरिचुअल क्वेश्चन के तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, इसे बढ़ाने की कोशिश करता है, तब उसके विचार होते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन से हमें पता चलता है हाउ सोशल द पर्सन इज। द मोर द स्पिरिचुअल क्वेश्चन, द मोर सोशल द पर्सन इज। और अगर उसके आगे हम पहुंचे, और इला आपने ये बात नोटिस की होगी, दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मैश्लोज लॉ ऑफ हायरार्की। हमने सबने पढ़ा है, हमारी बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात करते हैं, तब एक्चुअली हम अपनी जिंदगी सुखमय, आनंदमय और संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी से पूर्ण बनाना चाहते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। तो दिस इज रिलेटेड टू रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स। और उसके आगे जैसे ही चलते हैं, फिर इमोशनल नीड्स होती हैं, जो कि पता चलती है इमोशनल क्वेश्चन के सहारे। फिर सोशल नीड्स होती हैं, जिसे हम मेजर करते हैं SQ माना सोशल क्वेश्चन के सहारे। और उसके आगे मैश्लो के हायरार्की में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। और जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, तब खुशी, हैप्पीनेस, शांति, प्यूरिटी, ये सारी वो बातें होती हैं जिसकी वह तलाश में होता है और इसे मेजर किया जाता है हैप्पीनेस क्वोशेंट के द्वारा। तो इस प्रकार अभी हमने देखा कि हमारी जो एशिया पावर है, माना एनालिसिस की पावर, सिंथेसाइज करने की पावर, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने की पावर, और एसिमिलेट माना उस इंफॉर्मेशन को हमारी जिंदगी में धारण करने की पावर। तो यह पावर हम में कैसे विकसित होती है? जिस प्रकार हमारा नीड्स की हायरार्की में उस लैडर पे हम ग्रो करते हैं, जब हम बेसिक नीड्स के दायरे में होते हैं, उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमारी एनालिसिस पावर ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अदर पावर्स। हम सीढ़ी और आगे बढ़ते हैं और जब हम इमोशनल लेवल पर लोगों से अटैच होने लगते हैं, फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं, रिलेशनशिप्स में निकलते हैं, संबंध में और संपर्क वालों के साथ मिलते हैं, तब क्या होता है, हमारी इमोशनल नीड्स वह इंक्रीज करने लगती हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। अब हम ऊपर चल रहे हैं, अपने इमोशनल नीड्स को केयर कर रहे हैं और धीरे धीरे इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही हम इमोशनल नीड्स में स्ट्रांग होने लगते हैं, माना इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी में स्ट्रांग होने लगते हैं, तो उसके बाद क्या आता है, धीरे धीरे द हाईएस्ट स्टेजेस एसिमिलेशन पावर को बढ़ाना। तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हम अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएं और हायरार्की नीड्स के अनुसार, दैट्स द लास्ट स्टेज दैट अ पर्सन नीड्स इन हिज लाइफ, और उसके पीछे फिर वह हैप्पीनेस की खोज में, शांति की खोज में, पवित्रता की खोज में, सेल्फलेस लव की खोज में, इस सब की खोज में निकल पड़ता है और इसको मेजर किया जा सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स के द्वारा।
तो सिस्टर तृप्ति, क्या ये हैप्पीनेस, इमोशंस, ये सब किसी यंत्र के द्वारा मेजर किए जाते हैं?
आजकल तरह तरह के यंत्र निकले हैं, आईक्यू को भी यंत्रों के द्वारा मेजर कर सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी हम में कितनी है उसे भी मेजर किया जा सकता है, सोशल क्वेश्चन को भी मेजर किया जा सकता है, और हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स को भी मेजर कर सकते हैं।
सिस्टर, हम जो ये स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं, जहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है, तो अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमारी कोशिश जारी है कि हम उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुँच पाएँ। तो जब अभी हमारे मन में असंतोष रहेगा, असंतुष्टि रहेगी, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हुए हमारी इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएं?
हम सभी में मुख्यतः पांच विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जब हम इस स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी स्टार्ट करते हैं, माना एसिमिलेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस जर्नी में हम क्या करते हैं, अपने विकारों को, अपनी नेगेटिविटीज को पीछे छोड़कर हम पॉजिटिविटी की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं। और इस यात्रा में यह पाया गया है कि शुरुआत में हमारी एसिमिलेशन पावर वीक होती है, और अब हम जैसे जैसे अपनी नेगेटिविटी से दूर जाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, वैसे ही हमारी एसिमिलेशन पावर बढ़ती जाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम क्रोध की बात करें, जो एक नेगेटिविटी है और आम तौर पर हम सबके मन में अभी पाई जाती है, जल्दी ही हमें गुस्सा आ जाता है, और अगर क्रोध पर हमें काबू पाना है तो हमें क्या करना होगा, क्रोध का एंटीडोट है शांति, एंगर का एंटीडोट है पीस। तो हमें क्या करना होगा, अगर क्रोध को छोड़ना है तो क्रोध को यह नहीं कहना, गुस्सा, एंगर, यू गो, उसे हमें भेजना नहीं है, लेकिन हमें शांति को अपनाना है, अपने माइंड को पीसफुल रखना है, जितना ज़्यादा हम अपने आप को शांति की स्थिति में रखेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने मन में शांतिपूर्ण विचारों का जेनरेशन करेंगे, क्रिएशन करेंगे, गुस्सा अपने आप ही छूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर एक बच्चे के हाथ में कोई कैंची आ गई है या कोई घातक वस्तु आ गई है, अगर उससे हमें वह कैंची छुड़ानी है और अगर हम छीनने की कोशिश करें तो क्या वो हमें देगा?
नहीं, छीनेंगे तो ज़रूर नहीं देगा, शायद प्यार से मांगे तो दे दे।
ज़रूर, तो हम जितनी छीनने की कोशिश करेंगे वो उसे उतना ही टाइट पकड़ लेगा, और हमें अगर उसे छुड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे एक झुनझुना दिखाना पड़ेगा जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो झुनझुने की तरफ, उस आकर्षक खेल की तरफ। और अब उसके हाथ जब आकर्षक खेल को पकड़ने की तरफ के लिए जाते हैं तो उसके हाथ से कैची अपने आप छूट जाती है। तो हमने क्या देखा, मन क्या है? बच्चे की तरह है। अगर हमें मन से कोई बात छुड़ानी है तो जोर से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा इला, प्यार से। तो यहाँ भी हम अगर क्रोध छुड़ाना चाहते हैं तो हम गुस्से से या सेल्फ कंट्रोल से या फिर कठोरता से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जैसे ही शांति को धारण करेंगे, जैसे ही मन को शांति की स्टेट अच्छी लगने लगेगी, जैसे ही वह शांति में खोने लगेगा, क्रोध का क्या होगा? वह अपने आप छूट जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमें अपने स्पिरिचुअल क्वोशेंट को बढ़ाना है, अगर हमें अपनी एसिमिलेशन पावर को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इन अपनी नेगेटिविटीज के एंटीडोट्स को अपनाना होगा। लव को, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, इन सारे गुणों को अपनाना होगा, और इन्हें अपनाते अपनाते हमारे मन में से इम्प्योरिटीज, नेगेटिविटीज अपने आप ही चली जाएंगी।
तो इसका अर्थ यह है कि अगर प्योरिटी मन में आ जाए तो इम्प्योरिटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी और उससे अपने आप निकल जाना पड़ेगा।
सही कहा आपने। अगर हमने एक ग्लास दूध से भर दिया है तो उसमें और कैपेसिटी ही नहीं है कि उसमें कोई कीचड़ डाला जाए। तो हमने अभी यह देखा कि मनुष्य में सारे अच्छे गुणों का विकास हो सकता है और बहुत आसानी से हो सकता है, प्यार से हो सकता है। और वैसे भी कहा जाता है ना, ये विकार ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट है। कहते हैं ना, कभी किसी को क्रोध आ जाता है तो कहते हैं ना, जानवरों की तरह वे लड़ाई करते हैं। माना ये ओरिजिनल नेचर किसका है? जानवरों का माना जाता है। ह्यूमन बींग्स के ये ओरिजिनल क्वालिटीज नहीं है, ये नेगेटिविटीज हमारे ओरिजिनल गुण नहीं है। और जो गुण हमारे ओरिजिनल नहीं है उन्हें छोड़ना क्या कठिन बात है?
जो हमारा ओरिजिनल नेचर है उसको तो अपनाना आसान होना चाहिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। पर हाँ, जो हमारा ओरिजिनल नेचर नहीं है उसे अपनाना कठिन होता है।
हाँ, तो इला जैसे आपने कहा, जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, लव, पीस, हैप्पीनेस, प्योरिटी, इसे अपनाना आसान है। और ऐसे हमारे पास टेक्निक्स हैं जो ये हमें बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। हाँ, क्या कठिन है? कठिन यह है कि हम एनिमल्स को कहें कि वो अपने विकार छोड़ दें, क्योंकि उनमें एशिया पावर नहीं है, एनालाइज करने की क्षमता नहीं है, सिंथेसाइज, इंटीग्रेट और एसिमिलेट करने की क्षमता नहीं है। इसलिए हम एनिमल्स को तो नेगेटिविटी से छुड़ाना मुश्किल है, पर अगर हमारे लिए इतना सहज है कि हम अपनी नेगेटिविटी को छोड़ें, पॉजिटिविटी को अपनाएं और अपने आप एशिया पावर को यूज़ करके हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं, हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। कहते हैं ना, विकार सबसे ज़्यादा जानवरों में होते हैं, और जानवर छुपकर विकार नहीं करते। जैसे कि कहते हैं बंदर, उसमें सबसे ज़्यादा विकार होते हैं। मोह अगर कहें तो बंदर में सबसे ज़्यादा होता है। कहते हैं बंदर का अगर बच्चा मर भी जाए तो उसे छाती से लगा के घूमता रहता है। और जबकि हम ह्यूमन बींग्स को देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में भी मोह होता है। माता अपने बच्चे के साथ मोह रखती है और वो अगर मानो अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठी है, बाहर से कोई आ जाता है तो झट अपने बच्चे को नीचे उतार के उसे बिठा देती है और फिर उनसे बात करती है। उसी प्रकार से जानवरों में जो विकार होते हैं, क्योंकि उनमें एनालाइज करने की पावर नहीं होती, वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाते, इसलिए वह यह नहीं समझते कि यह नेगेटिविटी है, इसे छोड़ना है। जबकि ह्यूमन बीइंग्स हम अच्छे और बुरे में भेद कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को एनालाइज कर सकते हैं, और अब हमें क्या करना है, इसी एनालिसिस कैपेबिलिटी को यूज करना है, इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना है, ताकि हम बुराई को जल्दी से एनालाइज कर पाए, उस बुराई को सिंथेसाइज करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाए, उसे ऐसा इंटीग्रेट करें ताकि वन पॉजिटिविटी दूसरी बुराइयों को कन्वर्ट करके उन्हें भी पॉजिटिव बना सके और सारी पॉजिटिविटीज एक साथ लिंक हो जाए, यूनाइट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, और फिर उसे हमें एसिमिलेट करना है, धारण करना है हमारे जीवन में, ताकि हमारे कर्मों से भी पॉजिटिविटी दिखाई दे। तो इस प्रकार जब यह पावर हम ह्यूमन बीइंग्स के पास में है और अब हम ये जानते हैं, ये चारों पावर्स को हम यूज कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाने के लिए, तो हमें इनका पूरा पूरा इस्तेमाल करना है।
सिस्टर तृप्ति ने आज हमें ASIA एशिया प्रोसेस के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटीग्रेट, एसिमिलेट, ये जो प्रोसेस है हमारे मन में निरंतर चलता रहता है, पर हमारी बुद्धि को चाहिए कि वो इस प्रोसेस के चलने के दौरान जाने कि क्या अच्छा और क्या बुरा, बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करे। एशिया प्रोसेस का जो एसिमिलेशन लेवल है वो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लेवल। हमें वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है, क्योंकि उस लेवल पे है प्रेम, आनंद, सुख। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।
मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि था, शराबी वगैरह था। जब मैं 15 साल के पहले इस ज्ञान का परिचय मिला, मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से जो शक्ति मिलती है वो शक्ति का मैं अनुभव करने लगा, तो जब मेरा जीवन में बहुत महसूस था, अच्छा अनुभव होने लगे, मैं अपना जीवन पूरा परिवर्तन करने के लिए बीत गया हूँ। तो जब से मेरा चिड़चिड़ापन, शराब आदि, सिगरेट पीता था, बहुत मेरे अंदर दुर्गुण थे, वो मेरे से बहुत कुछ गलतियाँ होती थी, तो उससे मैं बहुत संतुष्ट होने लगा, मैं मेरा परिवार संतुष्ट रहने लगा।
मधुबन शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। है सूर्य हम सूर्य की किरणें ज्ञान उजाला शिव से पाना है
सत्यम शिवम सुंदरम
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके शिव ही अंततः सबका ठिकाना है शिव समुद्र है हम सरिताएं मधुर मिलन के स्वप्न सजाएं शिव सहज समर्पण स्वीकार करता
शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है